पृष्ठ संख्या 90। घ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता में सांगीतिक संस्थाओं का महत्व। अब तक के अध्यायों में यह स्पष्ट हो चुका है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने एवं उसके स्तर का निर्धारण में अनेकों श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से विभिन्न सांगीतिक संस्थाओं का मुख्य योगदान है। संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए यह संस्थाएं आजकल जो कार्य कर रही हैं, उनमें संगीत एवं शिक्षण के प्रति रुझान दोनों का ही विशेष महत्व है। पृष्ठ संख्या 91। भारतीय संगीत की परंपरा को बनाए रखने में सांगीतिक संस्थाओं का अत्यधिक योगदान रहा है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से नई तकनीकों एवं शैलियों का विकास हुआ। मध्य काल में विभिन्न घरानों की परस्पर स्पर्धा के द्वारा संगीत में नए नए तकनीक प्रयोग हुए। आधुनिक काल में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं ने इस परंपरा को जीवित रखा है। जब से संस्थागत शिक्षण प्रारंभ हुआ, उसके लगभग कुछ ही वर्षों में देश में जगह जगह पर अनेकों संस्थाएं चल निकली, जिनकी अगर आज हम गिनती करें तो गिनना भी शायद असंभव है। जब संस्थागत शिक्षण प्रारंभ हो गया, तब शिक्षकों एवं प्रशासकों का एक समूह संगीत को सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय की भांति शामिल करने के काफी विरोध में था। पंडित भातखंडे जी एवं पंडित पलुस्कर जी तथा उनके शिष्य वर्ग ने कठोरता एवं दृढ़ निश्चय के साथ ऊंची आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप विरोधी पक्ष को शांत होना पड़ा और धीरे धीरे संगीत को भी एक विषय के रूप में सम्मिलित कर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकार किया। इस प्रकार देश के सभी प्रांतों में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में सर्वाधिक महत्ता प्रदान की गई। इस काम के लिए सबसे अधिक श्रेय पंडित भातखंडे जी एवं पंडित पलुस्कर जी, इन दोनों ही महान विभूतियों को दिया जा सकता है। इन दोनों को ही हमारे संगीत का संगीतोद्धारक विष्णुद्वय नाम से पुकारते हैं। वस्तुतः संगीत का शिक्षण कोई सरल कार्य नहीं है। सामान्यतः औपचारिक शिक्षण एवं संगीत शिक्षण में काफी अंतर है। सामान्य शिक्षण में विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती है, जबकि संगीत का शिक्षण प्रत्येक छात्र की क्षमता तथा कंठ ध्वनि के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त छात्र तथा छात्राओं की कंठ ध्वनि में भी काफी अंतर होता है। पाश्चात्य संगीत की शिक्षा समूह में दी जा सकती है, किंतु हिंदुस्तानी संगीत को एक साथ अनेकों विद्यार्थियों को समूह में सिखाना एक कठिन कार्य है। आज विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर संगीत को एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन संगीत शिक्षण में संगीत संबंधी आने वाली समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान अभी तक नहीं जा पाया है। उत्तर भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में संगीत विषय का अध्यापन किया जा रहा है। इसके लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम रखा जाता है। संगीत में लिखित और क्रियात्मक दोनों ही प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थियों को BA, MA, MPhil आदि की उपाधि प्रदान की जाती है। संगीत कला के विकास हेतु आज कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। आजकल शोध कार्यों में क्रियात्मक तथा शास्त्र संबंधी पक्षों पर कार्य हो रहा है। विद्यार्थियों में आजकल इसकी रुचि देखी जा सकती है। उत्तर भारत के कुछ विश्वविद्यालयों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत स्वतंत्र विषय रूप में पढ़ाया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 92। उत्तर भारत के कुछ संगीत संबंधी विश्वविद्यालयों के नाम। 1, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। 2, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश। 3, रुदेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। 4, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 5, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 7, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस उत्तर प्रदेश। 8, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ मध्य प्रदेश। 9, वनस्थली संगीत विद्यापीठ, वनस्थली राजस्थान। 10, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान। 11, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, धौलपुर शांति निकेतन। 12, विश्व भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता। 13, पटना विश्वविद्यालय, पटना बिहार। 14, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा। 15, बम्बई विश्वविद्यालय, एमजी रोड फोर्ट बम्बई। 16, महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा। 17, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। 18, संगीत रिसर्च अकादमी, कोलकाता। 19, प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 20, अजमेर विश्वविद्यालय, अजमेर राजस्थान। 21, दयाल बाग शिक्षण संस्थान, आगरा उत्तर प्रदेश। 22, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर। 23, शिवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर उत्तर प्रदेश। 24, भातखंडे विद्यापीठ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। 25, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। 26, बरकत उल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल। 27, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। 28, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ऑफ झांसी। 29, श्री राम भारतीय कला केंद्र, नई दिल्ली। 30, प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़। 31, गांधर्व महाविद्यालय, नई दिल्ली। 32, हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला हिमाचल प्रदेश। 33, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक हरियाणा। 34, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर महाराष्ट्र। 35, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल उत्तर प्रदेश। पृष्ठ संख्या 93। इन सभी विश्वविद्यालयों में संगीत कला के शिक्षण का कार्य आजकल हो रहा है। किसी विश्वविद्यालय में गायन तथा वादन के अतिरिक्त नृत्य कला की भी शिक्षा दी जाती है, तो किसी में केवल गायन अथवा नृत्य की। स्कूल, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में संगीत विषय की व्यवस्था से एक स्तर स्थापित हो गया है। इन शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी आगे चलकर अपना अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्कूलों, विश्वविद्यालयों, निजी संस्थानों तथा शोध कार्यों द्वारा संगीत का समुचित विकास हुआ है, किंतु इनके कार्य को आकाशवाणी, दूरदर्शन, विश्वविद्यालय एवं संगीत संस्थाएं आदि सभी समाज रूप से संगीत शिक्षा का प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देश के सभी छोटे बड़े स्थानों पर संगीत जनसाधारण से किसी न किसी रूप में अवश्य ही संबंधित है। संगीत का यह विकास केवल अपने ही देश में दृष्टिगत नहीं होता, वरन विदेशों में भी हिंदुस्तानी संगीत का प्रचार हो रहा है। भारतीय कलाकार विभिन्न देशों में अपनी कला के माध्यम से संगीत का प्रचुर प्रचार कर रहे हैं। आजकल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन तथा नृत्य विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अधिकाधिक प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार भी प्रयत्नशील एवं गतिमान है। शिक्षा मंत्रालय का सांस्कृतिक विभाग जैसा सरकारी प्रमुख विभाग है, जो विदेशों में भारतीय एवं संस्कृति के विशेषज्ञों को दल सहित भेजकर भारतीय कला एवं संस्कृति का सही रूप प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी संदर्भ में इंग्लैंड में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया कार्यक्रम विदेशों में भारतीय कला के प्रचार और लोकप्रियता का ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है।